ओम शांति। ईसा के 300 पहले मिस्र में इस संसार की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, सबसे बड़ा ग्रंथालय था। एक ऐसा ग्रंथालय जहां पर ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी हर तरह की किताबें उस ग्रंथालय में थी। फिर बाद में 7वीं शताब्दी में बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने उस ग्रंथालय को नष्ट कर दिया। उस ग्रंथालय का जल जाना अर्थात एक संस्कृति का समूचा ज्ञान नष्ट हो जाना। 6 मास तक वह ग्रंथालय, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, जलती रही। और किंवदंती है कि उसमें से एक किताब बच गई थी। शायद झूठी ही कहानी हो, परंतु यह एक किताब एक अत्यंत गरीब, विपन्न व्यक्ति के हाथ लगती है और वह व्यक्ति उस किताब को पढ़ना चालू करता है और पढ़ते पढ़ते वो ये जानता है कि उस किताब में पारस पत्थर का रहस्य छिपा हुआ है, फिलोसोफर स्टोन, टच स्टोन। उसमें लिखा रहता है कि दूर ब्लैक सी के पास जो समुद्र है, उस समुद्र के तट पर असंख्य पत्थर है और उन पत्थरों में एक पत्थर पारस पत्थर है। तो वो गरीब व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, अपना सब कुछ बेचकर वो पहुंच जाता है ब्लैक सी के पास। वहां पर एक छोटी सी कुटिया बना लेता है और वहां देखता है साहिल के पास असंख्य पत्थर है, छोटे छोटे पड़े हुए, परंतु हाँ एक उस किताब में लिखा रहता है जो पारस पत्थर होगा वो बाकी पत्थरों से अधिक गर्म होगा। यही पहचान है पारस अर्थात जो पत्थर को भी, जो लोहे को भी सोना बना दे, ऐसा पारस पत्थर। तो व्यक्ति सुबह सुबह समुद्र तट पर पहुंचता है और हाथ में पत्थर उठाता है, पाता है ये तो ठंडा है। तो अब क्या करे, वो सोचता है अगर मैं पत्थर उठाऊं और वहीं फेंक दूं तो मैं शायद बार बार उसी पत्थर को उठाऊंगा। अच्छा ये होगा कि मैं पत्थर उठाऊं और यदि वो ठंडा हो तो मैं उसे समुद्र में फेंक दूं, ताकि वही पत्थर फिर से ना उठाऊं, क्योंकि पारस पत्थर वो है जो कि बाकी सभी पत्थरों से कैसा होगा, गर्म होगा। तो पहला दिन भोर से सांझ तक वो बैठता है, बहुत सारे पत्थर उसके हाथ में आते हैं, हाथ में पत्थर पकड़ा, पाया ये तो ठंडा है और उस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। शाम तक उसके हाथ में सभी ठंडे पत्थर ही आते हैं। एक दिन बीत जाता है परंतु वो हार नहीं मानता। दूसरा दिन फिर प्रयत्न करता है सुबह से लेके तो शाम तक, परंतु हाथ में कुछ भी नहीं आता। तीसरा दिन ऐसा एक हफ्ता और फिर धीरे धीरे एक मास बीत जाता है। अब उसका बस एक ही काम है, सुबह से लेकर शाम तक पत्थर उठाना। पत्थर ठंडा है और समुद्र में फेंकना, परंतु आशा नहीं छोड़ता है क्योंकि उसे पारस पत्थर किसी भी हाल में चाहिए था और किताब में लिखा था। और किताब कोई साधारण नहीं थी, मिस्र की किताब थी, उस सिकंदरिया ग्रंथालय की किताब जिसमें ऐसी बातें लिखी थी जो कभी असत्य नहीं हो सकती। तो 3 मास गुजर जाते, फिर भी कुछ नहीं आता है। 1 साल गुजर जाता है, फिर भी सब ठंडे ही पत्थर हाथ में आते हैं। और धीरे धीरे 3 साल गुजर जाते हैं, फिर भी सुबह सुबह उठकर जाना, समुद्र तट पर बैठना, पत्थर लेना और समुद्र में फेंकना। यही 3 साल जब गुजर जाते हैं और एक दिन वो इसी तरह समुद्र तट पर बैठा होता है और उसके हाथ वही काम करना चालू रहते हैं, अचानक हाथ में एक पत्थर आता है। पत्थर गर्म था और उसने वो फेंक दिया। ऐसा क्यों हुआ? लंबे समय का अभ्यास, क्योंकि व्यक्ति जो बार 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 करते रहता है वो चेतन मन से अवचेतन मन तक प्रवेश कर जाता है और अवचेतन मन स्वतः ही कार्य करता है। तो उसकी वो आदत पत्थर उठाना और फेंकना, और जिस दिन गर्म पत्थर भी हाथ में आया उस दिन भी उसने फेंक दिया। तो आदतें व्यक्ति को क्या कर देती है? गुलाम बना देती है। लंबा समय तक एक ही अभ्यास जब किया जाए, एक ही कर्म, एक ही संकल्प, एक ही बात, एक ही चीज का सेवन, तो चाहे वो कुछ भी हो, क्या बन जाती है? आदत। और धीरे धीरे एक व्यसन। कुछ दिनों से आप यहां पर सब आए और आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी। व्यसन क्या है, किन किन चीजों का होता है, कौन कौन से मादक द्रव्य है, उनका प्रचलन कैसा है संसार में, उनके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो व्यसन से ग्रसित है उसके क्या क्या लक्षण हैं, उसे किस तरह का परामर्श दिया जाना चाहिए, किस तरह की ट्रीटमेंट प्रबंधन उसका करना चाहिए, वो सारी बातें आप 1-2 दिन से यहां पर सुन रहे हैं। बहुत कुछ सुना और बहुत सारी बातें आपको पहले भी पता थी, परंतु यहां पर कुछ बातें और स्पष्ट हुई। इतना सब हमने सुना जाना, कल भी एक दिन और है जिसमें सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये सब करने के बाद क्या, ये एक प्रश्न है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है द बॉल इज इन योर कोर्ट, अर्थात गेंद अब तुम्हारे पाले पर है, में है। टेनिस का कभी गेम हुआ करता था, उस समय इस मुहावरे की खोज की गई थी। टेनिस या बैडमिंटन, गेंद इस कोर्ट से उस कोर्ट जाता है, तो जब उस ओर आता है तब अब तुम्हारी बारी है खेलने की। तो इससे पहले कि हम इसकी गहरी चर्चा करें, इस टॉपिक से संबंधित ऐसी 7 बातें, इस मुहावरे के ऐसे 7 अर्थ है। द बॉल इज इन योर कोर्ट अर्थात क्या? सबसे पहला अर्थ है चॉइस। यहां पर आप आए, यहां की बहुत सारी बातें सुनी, यहां के वातावरण का अनुभव किया, यहां के लोगों से मिले, यहां का भोजन खाया, ज्ञान की लेन देन की। अब चॉइस आपके हाथ में है, अब चुनाव आपके हाथ में है। 7 बातों में से सारी की सारी बात एक स्वयं के लिए और एक दूसरों के लिए। पहले तो स्वयं हमें चुनाव करना है कि जहां यहां आकर हमने जो कुछ सीखा है, जाना है, समझा है, वो स्वयं हम अपने जीवन में कहां तक लाते हैं, कहां तक हम उसे धारण करते हैं, इसका चुनाव हमारे हाथ में है। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां आए, बहुत कुछ अच्छा था सुना और फिर भूल गए, थोड़ी बहुत बातें याद रही और फिर स्मृति पटल से सब मिट गया, ये भी एक विकल्प है। तो 2 ऑप्शंस, जिसको के बारे में आपको यहीं पर बैठकर सोचना है। चुनाव, क्या अब तक जैसा जीवन चल रहा था उसे वैसे ही चलने देना है, या उसमें कुछ परिवर्तन लाना है, या अब तक हमने यहां पर व्यसनों के बारे में, एडिक्शंस के बारे में जो बातें सुनी, ये केवल दूसरों को सुनाने के लिए है, या मेरे अपने जीवन में भी मैं किसी ना किसी एडिक्शन, व्यसन, व्याधि, हैबिट, डिस्ट्रक्टिव हैबिट से ग्रसित हूं? ऐसी कौन सी वो आदत है मेरी अपनी, किस गहरे तल में वो आदत है, किस भावना के तल में है, स्मृति के तल में है, कल्पना के तल में है, कहां है? संकल्प में है, बोल में है, कर्म में है, चेतना की किस गहराई में छिपी है वह आदत जो कि व्यसन बन गई है, मैं चाहता हूं उससे छूटूं, परंतु अब वो मुझे पकड़े हुए है। At first, man takes the drink, then drink takes the drink, and then drink takes the man. अंग्रेजी में कहावत है, पहले व्यक्ति शराब को पीता है, फिर शराब शराब को पीती है, और फिर शराब व्यक्ति को पी जाती है। क्या ऐसी ही कोई मानसिक शराब, विकारों की शराब मैं तो नहीं पी रहा हूं, किसी संकल्प की शराब? चुनाव अब मेरे हाथ में है, मुझे निर्णय करना है क्या करूं और क्या नहीं करूं। इस दिव्य पवित्र प्रांगण में आकर भी यदि मेरे जीवन में परिवर्तन ना हो, तो मैं दूसरों के जीवन में परिवर्तन कैसे करूंगा? यहां यदि चेतना आंदोलित नहीं हो रही है, तो संसार में क्रांति हम कैसे ला सकेंगे? स्वयं स्वयं से पूछना है, मैं अब किस मार्ग पर जाऊं? वही मार्ग पर दुख भरे, दर्द के, आंसुओं के, पीड़ा के, आर्तनाद के, या फिर कोई और? कोई और भी दूसरा मार्ग है जीवन का। ये केवल एक कॉन्फ्रेंस, ये केवल एक समागम नहीं, परंतु जागरण का एक सुअवसर है। तो पहला अर्थ है चुनाव, दूसरा अर्थ है एक्शन। अब मुझे कौन सा कर्म करना है, कौन से कर्तव्य करना है। कर्तव्य की स्मृति यहां आकर आई है, केवल प्रोफेशन वाली नहीं, परंतु जीवन में क्या करना है। जीवन कहां दिशाहीन भटक रहा था, क्या वह स्मृति यहां नहीं आई। कौन सी एक्शन, कौन से कर्म, कौन से दायित्व। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अर्थात अब डिसाइड करना है क्या करूं क्या नहीं करूं। क्या हमारी भी स्थिति शेक्सपियर के उस हैमलेट की तरह तो नहीं है, टू बी और नॉट टू बी, यही सोचते रहता है, करना है कि नहीं करना है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या सार है क्या असार है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या जो असत्य है जो असार है और जो मिथ्या है उसी को पकड़ के नहीं रखा है, और जीवन ऐसा ही बीता जा रहा है। तीसरा, डिसीजन, अर्थात अब एक निर्णय लेना है। किसके प्रति निर्णय? स्वयं के प्रति, स्वयं के जीवन का निर्णय। कब तक इसको टालते रहेंगे? जर्मन में एक फिलोसोफर कभी हुए थे, इमैनुअल कैंट। निरंतर दर्शन शास्त्र का चिंतन करते रहता था, एक गहन चिंतक, थिंकर, फिलोसोफर। किसी एक स्त्री को उससे बहुत प्रेम हो गया, और वो चाहती थी कि वो उसको आकर कहे, परंतु वो अपने संशोधन और अपने विचारों में खोया रहता था, तो वो भी कब तक इंतजार करती। वो एक दिन खुद ही गई और उसने कहा कि मैं सोच रही हूं कि तुमसे विवाह करूं, आप क्या सोचते हो? उसने कहा मैं सोच कर बताऊंगा, इतने आसानी से नहीं बता सकता, क्योंकि मैं पूरे उसमें पॉइंट्स निकालूंगा, फायदे क्या है और फिर नुकसान क्या है, सोचूंगा पूरा, उसके बाद ही मैं कोई निर्णय दूंगा। तो वो तो चली जाती है और वो सोचना आरंभ करता है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ता है और यहां वहां की बातें, एकांत में बैठकर मनन चिंतन करता है। करते करते 3 साल गुजर जाते हैं, और 3 साल के बाद फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि करनी चाहिए, क्योंकि अनुभव बढ़ेगा। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक्सपीरियंस मिलेगा, और उस एक्सपीरियंस से एक नया दर्शन शास्त्र लिखा जा सकता है। तो फिर अभी कहानी अधूरी है। तो फिर वो एक दिन जब ये निश्चय कर लेता है कि करनी चाहिए, तो उसी कन्या के घर जाता है, ठक ठक, और उसके पिता दरवाजा खोलते हैं। वो कहता है मैं इमैनुअल कैंट हूं, और आपकी कन्या मुझसे विवाह करना चाहती थी, तो मैं अब तैयार हूं। तो वो पिता कहते हैं उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे भी हैं, यू आर वेरी लेट। जीवन भी ऐसा ही बहा जा रहा है, निर्णय हम कब करेंगे? जीवन का निर्णय करना है, किस दिशा में इसको ले जाए। 2 ways diverged in the wood, and I took the one less traveled, and that has made all the difference. कवि लिखता है कि 2 मार्ग गुजर रहे थे, और मैंने वह मार्ग चुना जो कि कम से कम लोग जिस पर चलते हैं, जिस पर भीड़ कम है, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। जब जब जीवन में 2 विकल्प आए, ये या वो, उसको चुनो जो कठिन है, क्योंकि द रिजल्ट वुड बी ग्रोथ। जब जब 2 विकल्प आए, एक जाना हुआ एक अनजाना, एक नोन एक अननोन, तब उसको चुनो जो अननोन है, परिणाम विकास होगा। मन चाहता है टू फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ऐसा मार्ग जो निष्कंटक हो, ऐसा मार्ग जिसमें कोई विघ्न न हो, ऐसा मार्ग जो सहज हो, सरल हो, आसान हो, परंतु मन को उस मार्ग पर ले जाओ जो कठिन है, परिणाम विकास होगा। चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अर्थात अब ये मेरी जिम्मेवारी है। किसी और को मैं ब्लेम नहीं करता, किसी और को मैं कुछ नहीं कहता, सब कुछ मेरा ही है, मेरे पास आ रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। जो जो मेरे साथ हो रहा है, टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक अपॉन वन सेल्फ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अर्थात सारा जिम्मा मेरा है। मैं अब डिसाइड करने वाला हूं किस ओर जाना है। उसी मार्ग पर चलते रहूं, उसी पिटे पिटाए मार्ग पर चलते रहूं जिस तक अब तक चलता रहा, और जिसमें संसार चलता रहा, और जिसने दुख और दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया, और जीवन को व्याधि और पीड़ा और दर्द और संताप से भर दिया, या कोई दूसरा भी मार्ग है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पांचवा, अपॉर्चुनिटी। नियति ने अवसर दिया है जीवन को बदलने का। इससे पहले कि संसार को व्यसनों से मुक्त करे, अपनी जीवन की धारा को हमने निर्मल किया है, इस अवसर का लाभ लो, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। छठवा, टर्न। अब तुम्हारी बारी है। जीवन ने जो कुछ देना था दे दिया, सुनहरे अवसर प्रदान किए, अब हम क्या करें? अब इट इज योर टर्न। टर्न टू गेट बैक, टर्न टू रिवर्ट। और सातवा, इनिशिएटिव। अब मुझे पहल करनी है। ये सात बातें हैं, और इसके साथ हम अपनी आगे की चर्चा शुरू करते हैं। यहां पर हम व्यसनों की बात कर रहे हैं। पाश्चात्य जगत में एक मनोचिकित्सक कभी हुए थे, डोनाल्ड विलिकॉट। उसने बच्चों का अध्ययन किया और देखा कि बच्चों को क्या प्रिय है। तो विदेश में उसने देखा बच्चों को टेडी बेयर प्रिय होता है, टेडी बेयर या उसी जैसा कोई खिलौना, और वो टेडी बेयर उस बच्चों के लिए, उस बच्चे के लिए कोई एक खिलौना नहीं, परंतु एक जीवंत व्यक्तित्व होता है। माँ बाप समझाते, इसको यहीं छोड़ो, हम बाहर जा रहे। वो कहता, नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगा। वो उसके साथ बात करता है, वो उसके साथ खेलता है, वो खिलौना ही जैसे उसका एक व्यक्तित्व है छोटे बच्चे का। और उसी टेडी बेयर को वो लंबा समय तक अपने साथ रखता है। उस मनोचिकित्सक ने लिखा, ये है ट्रांजिटरी रेल्म, अर्थात एक अल्पकालीन जगत वो निर्माण करता है मन में। और मनुष्य का भी स्वभाव ऐसा ही है कि वो जीवन भर ऐसे ही कोई ना कोई टेडी बेयर को पकड़ के रखता है। वो फिर व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, व्यसन हो सकता है, मादक द्रव्य हो सकता है, और फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो उसके लिए रियल हो जाता है। बाकी लोगों के लिए असत्य है, परंतु उसके लिए वो सत्य है। और यदि उससे कोई कहे कि इसको छोड़ दो, शराब छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ेगा थोड़े समय के लिए, परंतु वही आदत फिर से एक दिन अचानक दुख के क्षणों में, जीवन में जब हलचल हो, उस क्षणों में फिर से उभर कर बाहर आ जाती है। कहां से आ गई? कौन सा स्टिमुलस, कौन सा ट्रिगर, कौन सा फिलिप, कौन सा उत्तेजना उसको प्राप्त हो गई? इसलिए आदतें क्या है, इसे हम पहले खुद समझे। मन के दो हिस्से हैं, चेतन और अवचेतन। मन के दो हिस्से होते नहीं है, मन एक ही है, परंतु दो तलों पर वो कार्य करता है। पिछले सदी में पहली बार इस सिद्धांत को सिगमंड फ्राइड ने रखा। अब तक किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि मन के भी दो हिस्से होते हैं, और जो आदतें हैं वो अवचेतन मन से आ रही है। आदतों से भी गहरी और एक चीज होती है, उनको कहा जाता है संस्कार। तो दो शब्द है, एक है आदत हैबिट्स और सेकंड संस्कार। दोनों में क्या अंतर है? एक है आदत, एक है हैबिट, एक है एडिक्शन और एक है संस्कार। दोनों ही अवचेतन मन के ही तल पर है, चेतन के तल पर नहीं है। दोनों ही कहां है? अवचेतन के तल पर है। अवचेतन अर्थात यदि मन के 10 हिस्से करो तो उसके जो 9 हिस्से हैं वो अवचेतन है, और जो एक हिस्सा ऊपर है आइसबर्ग हिमखंड, पानी के नीचे 9 हिस्से, ऊपर एक हिस्सा, आदतें उस 9 हिस्सों के सबसे ऊपरी तल में है, पर है वो भी अवचेतन में, और संस्कार सबसे गहरे है। इसके लिए चाहे आदत या संस्कार अपने आप कार्य करते हैं। पश्चिम जगत के एक लेखक विलियम जेम्स ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं जब युवा था, एक बहुत ही शरारती युवक था, एक दिन मैं एक चाय की टपरी पर खड़ा था अमेरिका के एक सड़क पर। वहां से एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, एक रिटायर्ड सैनिक, अपने सिर पर बहुत सारा सामान लिए हुए लड़खड़ाते हुए आ रहा था, जिसने 30 साल तक आर्मी में काम किया था। तो विलियम जेम्स ने लिखा कि मुझे एक शरारत सूझी और मैंने जोर से चिल्लाया अटेंशन। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति उधर से आ रहा था, उसके सिर पर बहुत सारा सामान था, एकदम अटेंशन हो गया और उसका सामान नीचे गिर गया। वो क्रोध से भर गया और विलियम जेम्स के पास आता है और कहता है, क्या तुमने अटेंशन कहा? विलियम जेम्स कहता है, हाँ मैंने कहा। क्यों, इस देश में अटेंशन कहना पाप है? वो कहता है, पाप तो नहीं, पर मैं 30 साल आर्मी में था और जैसे ही अटेंशन सुनता हूं मैं अटेंशन हो जाता हूं। दिस इज एन अनकॉन्शियस एक्ट, ये मुझे पता नहीं चलता, अपने आप होता है ये। वो सिपाही ये भी कहता है, यदि मैं मर भी जाऊं और कब्र में भी हूं और कोई अटेंशन कह दे तो शायद खड़ा होकर अटेंशन हो जाऊं। इतने गहरे तलों पर आदत चली जाती है। पहले तो आदतों को ही समझो, कैसे बनी है वो? रिपीटेशन से, पुनरुक्ति से, बार 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 उसको व्यक्ति ने किया है और हम अचानक एक दिन आ रहे और हमारा काउंसिलिंग सेशन चालू कर रहे और उसको कह रहे अल्कोहल से ये होता है, दारू से ये होता है, तुम इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो छोड़ भी देता है और फिर अचानक फिर चालू करता है, फिर से रिलैप्स। जिस तल में वो घटित हुई है उसी तल पर जाकर उसको उससे निजात दिलानी होगी। घटना चेतन मन के तल पर नहीं हुई है, अवचेतन के तल पर हुई है। आज हम ऐसी 10 आदतों की चर्चा करेंगे जिससे सबसे पहले हमको अपने आप को मुक्त करना है। और ये जो आदतें हम गिनाने वाले हैं वो शायद किसी में व्यसन बन चुके हैं और हमें ही पता नहीं कि हम उसके अधीन हो चुके हैं, परंतु वो हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। कुछ पीछे छूट जाते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ को हम भूले हुए रहते हैं, परंतु जहां भी हम जाते वो सारे व्यसन उपद्रव मचाते हैं जीवन में। जैसे दिखाया है एक बार, एक महिला जिसके 10-12 बच्चे होते हैं, सबके सब ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, और वो बच्चे इतने उपद्रवी होते हैं, कि जितने ट्रेन में पैसेंजर होते हैं, किसी का बैग खींचते हैं, किसी की कुछ करते हैं, सबको परेशान कर देते हैं। एक व्यक्ति वहां बैठा होता है, उसका अखबार लेकर एक बच्चा फाड़ देता है। तो ऐसे एक महिला जिसके 12 बच्चे होते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है, बहुत क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसका सामान भी गिर जाता है, अखबार भी फट जाता है। वो कहता है, आधे बच्चों को घर पे रख के आना चाहिए ना आपको। वो कहती, वही तो किया है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि सबको लेके आऊं, परंतु व्यक्ति अपनी सारी ही आदतों को लिए घूमता है, कभी कभी घर छोड़ देता है, पर जहां जाता है वहां अराजकता और उपद्रव होता है। दे प्ले हेवॉक, इंग्लिश का शब्द है एडिक्शन। अपनी डायरी में आप लिख लीजिए, इसमें 10 शब्द है, 10 अल्फाबेट्स, एक एक अल्फाबेट, एक एक आदत। सबसे पहला है ए। ये बातें हम आपके लिए भी बता रहे हैं और उनके लिए भी जो आपके संपर्क में आएंगे। द बॉल इज इन योर कोर्ट, चॉइस आपके हाथ में है, एक्शन आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अपॉर्चुनिटी आपकी है, टर्न आपका है, इनिशिएटिव आपको लेना है। जब ये सातों चीजें इन 10 बातों में आप करेंगे, तभी वो जो आपके संपर्क में आने वाले हैं, वो भी आपसे लाभान्वित होंगे। पहला है ए। ए अर्थात एम्बिशन, संसारिक महत्वाकांक्षा है। व्यक्ति भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है संसारिक महत्वाकांक्षाओं के पीछे, और यही उसका व्यसन बन चुका है। कहीं मैं भी इसी व्यसन से ग्रस्त तो नहीं? रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। संसार में तो हमको कहा जाता है कि ऊंची एम्बिशन रखो, ये करो वो करो, हम उस एम्बिशन की बात नहीं कर रहे, हम उन एम्बिशन, उन महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन को भटका रहा है और जिसे पाकर भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी नहीं है इसलिए दुखी है, जब वो मिल जाएगा तब दुखी रहेंगे, क्योंकि सुख संसार के वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पद में, प्रतिष्ठा में नहीं। संतुष्टता बाहर नहीं, आंतरिक है, अभ्युदय है, इंट्रिंसिक, अंतरंग है। कहां भागे जा रहे हैं? संसार की उच्चाकांक्षाओं के पीछे, महत्वाकांक्षाओं के पीछे। इतना पा लिया फिर भी अतृप्ति, इतना है फिर भी ऐसा लगता है कुछ भी नहीं। जब साइकिल थी तो कितने खुश थे, पर दुख तब चालू हुआ जब बाजू वाले के पास क्या दिखी, स्कूटर दिखी, तब दुख का आरंभ हुआ जीवन में। जब फिर हमने स्कूटर ले ली तब भी सुखी थे, परंतु फिर दुख का आरंभ हुआ, कब? जब बाजू वाले के पास कार देखी, और फिर हमारे पास भी कार आ गई और हम सुखी थे, पर फिर से दुखी हो गए। जब कौन सी कार दिखी उधर, लेटेस्ट कार, और उस कार के सामने फिर हमारी कार एकदम बैलगाड़ी सी लगने लगी। संसारिक तृष्णाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, क्या ये व्यसन तो नहीं बन गया? एडिक्शन का रूप तो नहीं धारण किया? जैसे वो एडिक्शन का एडिक्ट होता है, कैसे छुपा छुपा कर रखता है अपनी चीजों को। आपने सुना होगा हाउ टू आइडेंटिफाई अ एडिक्ट, इसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे, बाकी क्लासेस में हो गई है, बहुत सारी चर्चा है। हाउ टू आइडेंटिफाई अ एडिक्ट, हाउ टू नो दैट समबडी इज डूइंग एडिक्शन, समबडी इज ऑलरेडी एडिक्टेड। दूसरा डी, डी अर्थात डिजिटल एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन। हम हमेशा एक स्त्री थी जो कि बहुत ही सारे डिजिटल डिवाइसेस के एडिक्शन में थी, तो उसको एक बार सजेस्ट किया गया कि आप रिहैब सेंटर पर जाओ। उसने कहा आई विल गो टू रिहैब सेंटर प्रोवाइडेड इट हैज गॉट वाईफाई, देन ओनली, नहीं तो नहीं। एक व्यक्ति था जिसको सोता था तो रात में स्वप्न में अपने खटिया के नीचे सांप, अजगर, भयंकर प्राणी दिखाई देते थे। कई डॉक्टरों के पास गया, कोई भी उसका इलाज कर नहीं सका, और हर दिन जब उठता था सुबह सुबह दुखी होता था, क्योंकि रात में इतना भयावह स्वप्न, सांप, अजगर, ऐसे भयंकर प्राणी उसको दिखाई देते थे। तो सारा गांव भी बड़ा सहानुभूति रखता था उसके प्रति कि एक दिन तुम ठीक हो जाओगे, कोई तो तुमको ठीक करेगा। और एक दिन ऐसा होता है कि अचानक वो उठता है और इतना खुशी खुशी से घूमता है, गांव वाले पूछते हैं आज क्या हुआ, वो कहता है मेरी बीमारी ठीक हो गई। वो कहते हैं कैसे, कौन सा डॉक्टर मिला, वो कहता है डॉक्टर वगैरह कोई नहीं मिला, मेरा एक दूर का भाई आ गया, उसने ठीक कर दिया। कैसे ठीक कर दिया, वो कारपेंटर था, उसने खटिया के चार पैर ही तोड़ दिए। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, चार है, इन्हीं के नीचे विकार, वासनाएं, व्यसन, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया। अस्पताल में एक स्ट्रेचर पर एक मरीज को लेके आए और उसके साथ में बहुत सारे लोग। डॉक्टरों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, रिश्तेदारों ने कहा कुछ नहीं, तीन दिन से इंटरनेट बंद है, फेसबुक का मरीज है। व्यसन तो नहीं बन गया है इंटरनेट, डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता तो नहीं, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, डिजिटल रिहैब सेंटर पर पहले हम ही जाए ऐसी स्थिति तो नहीं। उठते ही सबसे पहले किसका कॉल, किसका मैसेज, रात में जो 10 फोटो पोस्ट कर दिए सुबह उठते ही कितने आए, सारा ध्यान उसी में, सारा ध्यान उसी में। छोटे से बच्चे को उसके मास्टर पूछते तुम्हारा परमानेंट एड्रेस क्या है, तो वो कहता है www.facebook.com। इतना गहराई में ये सारा चला गया है कि समय ही नहीं है, व्यक्ति को दिन रात उसी में डूबा रहता है। ये भी एक एडिक्शन है, पहले मानो ये है उसी के बाद उससे मुक्त हो सकते। जैसे वो एडिक्ट मानता है क्या, वो कहता है कभी कभी, कभी कभी, रोज थोड़ी ना होता है। फिर पूछो और, तो फिर धीरे 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 बताता है हाँ कभी कभी, अब आजकल वैसे रोज ही हो जाता है, बहुत धीरे धीरे, ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं बताता है। वैसे ये भी एक एडिक्शन तो नहीं हो गया, इंटरनेट पर बैठे हैं, रात को 10 बजे है, कब 1 बज गया पता ही नहीं, और क्या देख रहे हैं किसको पता, एक क्लिक इधर और स्वर्ग और नर्क की यात्रा। व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है, क्या खोज रहा है, अननेसेसरी सर्फिंग, वेस्ट सर्फिंग, विशियस सर्फिंग ढूंढता है, उससे ही उसका व्यक्तित्व पता चलता है वो क्या ढूंढ रहा। अभी अभी अखबार में आया था एक स्त्री जिसने आत्महत्या की कर दी, उसके मोबाइल को चेक किया गया 24 आवर्स में, हिस्ट्री में वो ढूंढ रही थी व्हाट आर द इजीएस्ट मेथड्स टू कमिट सुसाइड, सर्च हिस्ट्री। हम क्या कर रहे हैं मोबाइल के साथ, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या स्वउन्नति हो रही है, क्या आत्मा का हनन करने वाला यह हलाहल विष तो नहीं बन गया, क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ। एक समय था तब लड़ाइया जंग के मैदान में होती थी, जंग, अभी लड़ाइया कहां होती है, सोशल मीडिया पर लड़ाइया होती है। तीसरा डी, डाइट, सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति यही सोचते रहता है क्या खाऊं और क्या नहीं, कहां है संयम। हम आत्माओं को, संसार को संयम सिखाने वाले, क्या हमारे जीवन में खुद हम संयमित हैं, क्या हमने अपनी जिह्वा पर इतना वश्क में रख लिया है उसे कि हम दूसरों को सिखा सके कि तुम स्मोकिंग मत करो, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो। हम खुद ही शायद हो सकता है शुगर एडिक्ट है, चॉकलेट एडिक्ट है, ओवर ईटिंग से ग्रस्त है। हम क्या खा रहे हैं और कितना हमारा अपनी जबान पर, टेस्ट पर, स्वाद पर वश है। सुबह से उठते ही बस खाऊं खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, ये खाना ही कहीं एडिक्शन तो नहीं हो गया, यही चाहिए भोजन हो गया, अभी मीठा चाहिए ही चाहिए, चाहिए एडिक्शन नहीं है। हम संसार को डी एडिक्ट करने चले और खुद ही असंख्य एडिक्शन से ग्रस्त है, एक संयमित जीवन की सबसे पहली मांग है संयमित आहार, मित आहार, सम्यक आहार। सम्यक आहार में सबसे पहला उत्तेजना ना हो, दूसरा आलस प्रमाद न लाने वाला हो, वह आहार सम्यक आहार है। क्या हम भर रहे हैं? दुनिया भर की चीजें संसार में हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, क्या डाल रहे हैं अंदर? आयुर्वेद कहता है जो तुम खाते हो तीन विभागों में बंटता है। सबसे निचला विभाग मलमूत्र बनता है, दूसरा देह और तीसरा सीधा जाकर मन बनता है। जो खाओगे वही मन बनेगा। हिंसक है तो वैसे ही हिंसक वृत्तियां होगी। जितना वो सात्विक या सुपर सात्विक कह दो होगा, उतना ही मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, संयमित होगा। और जिसने भोजन को जीता उसने सभी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने जिह्वा को जीता सारी इंद्रियां स्वतः ही वश में आ जाएगी। ए डी डी आई, आई अर्थात इंप्यूरिटी, इंप्यूरिटी का एडिक्शन, लस्ट एडिक्शन, काम। इस वातावरण में जब से आप आए, आपने देखा होगा यहां एक अलौकिक शक्ति कार्य कर रही है। इस वातावरण में तरंग है पवित्रता की, तपस्या का वातावरण है, ब्रह्मचर्य की सुगंध उठ रही है यहां पर। कहीं इंप्यूरिटी ही एडिक्शन तो नहीं हो गया? विकार ही का व्यसन हमको तो नहीं लग गया? संयम यही तो नहीं खो गया और हम चले दुनिया को डिएडिक्ट करने? चेतना ही ग्रसित है विकार से। फर्स्ट अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑफ लस्ट। ए डी डी आई सी, सी अर्थात कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना, वार्तालाप करना, बोलना। बोलने में इतने व्यस्त है सुबह से शाम तक कि मौन क्या होता है, मौन का क्या आनंद है, साइलेंस का क्या स्प्लेंडर है, साइलेंस की कौन सी खुशबू है, भूल ही गया है। सुबह से लेकर शाम तक आवाज आवाज आवाज, इस शोरगुल में चेतना खो गई है। मौन को कितना धारण किया है जीवन में? इस संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं, इस संसार में जितने भी महान नर्तक, लेखक, गायक, शिल्पकार, आर्टिस्ट, कलाकार, महान कवि एकांत में थे, मौन में थे, संसार की आवाज से परे, और उसी एकांत और मौन की स्थिति में उन्होंने महानता को जन्म दिया, क्रिएटिविटी का जन्म हुआ महानता में, उस एकांत में, उस मौन में। और यदि हम स्पीच के ही एडिक्ट है, कॉन्वर्सेशन के ही एडिक्ट है, कोई चाहिए बोलने वाला? अपने आप को डुबो दो एक मौन में, उस अंतराल के बाद जो निकलेगा वो महान होगा, जो आइडियाज निकलेगी वो असाधारण होगी, संसार को हिला देने वाली होगी। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाइएस्ट काम आर फेड। विवेकानंद ने कहा है इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली यदि कुछ है तो वो मौन है। गुरु बैठा है और शिष्य बैठे, गुरु कुछ बोल नहीं रहा है, शिष्य कुछ पूछ नहीं रहे। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, शिष्यस्तु चिन्न संशया। सारे संशय ऐसे ही नष्ट हो रहे, मौन का ही व्याख्यान है। आवाज के इस दुनिया में, इस शोरगुल में, जीवन में मौन ही कहीं खो गया है? नेक्स्ट टी, टियर था ट्रेवल, गमनागम, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये देखूं वो देखूं, आज यहां कल वहां, साइट सीइंग। हां, ट्रैवलिंग से नॉलेज बहुत बढ़ता है, अनुभव बहुत बढ़ता है, परंतु जीवन ऐसा हो गया है कि एक जगह है ही नहीं, बस घूम ही रहे, ये देखूं वो देखूं। इंग्लिश में शब्द है वांडर लस्ट। अभी यहां से नहीं आए तो वहां जाना है, अब वहां से नहीं आए वहां जाना है, और जब वहां जा रहे हैं तब भी वहां है नहीं, कुछ और में बिजी है, फोटो निकालने में बिजी है, सेल्फी निकालने में बिजी है। वो निसर्ग का सौंदर्य, वो निसर्ग का आनंद, वो जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उस पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान केवल इसमें है कि मेरा फोटो यहां हम आए थे वो निकल जाए, बस। प्रकृति का प्रतिम सौंदर्य तुम्हें पुकार रहा है, प्रकृति की वह आवाज सुन, मौसम के सरगम को सुन, क्या गा रहा है समा, खामोशी भी गाती है, पर हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं माउंट अबू में टूरिस्ट लोग आते हैं, अनादरा पॉइंट, सनसेट पॉइंट, आते हैं पूरी गाड़ी भरकर, फटाफट फोटो लेते हैं, फोटो हुए और चल दिए। वो सूर्यास्त वहां हो रहा है, उसे किसी को कोई लेना देना नहीं है उस सूर्यास्त, उन बादलों से किसी को कोई लेना देना नहीं है, कल कल निनाद कहता बहता हुआ वह झरना, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है केवल फोटो से। तो ट्रेवल, अगला आय, आय से आय नेस, आय हुड, मैं का ही एडिक्शन है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरा फोटो छपना चाहिए, मेरा नाम नीचे आना चाहिए, कैंडल लाइटिंग में मैं रहना चाहिए, मैं जो पहले छोटा कैपिटल स्मॉल आय था बड़ा आय हो गया है। अध्यात्म अर्थात मैं को विलीन करना, यहां तो कुछ और ही हो रहा है, व्यक्ति जितना आगे बढ़ रहा है मैं और बड़ा होते जा रहा है, ये मैं का ही एडिक्शन है। हर एक चाहता है मैं, एक ही आवाज घूम रही है मैं। समय हमारे पास कम है, आगे बढ़ते हैं, आए आए के बाद ओ से क्या, ऑक्यूपेशन, वर्कोहोलिक हो गए, इतना काम कि ये नहीं कह रहे मैं हम वो ना करें, परंतु वो ऑक्यूपेशन ही एडिक्शन हो गया है व्यक्ति का, ये भूल गया है कि जीवन में लक्ष्य कुछ और ही है, ये जो कर रहा है, ये जो काम है, ये तो एक कर्म दिया गया है ताकि निस्वार्थ कर्म करो और कुछ पुण्य कमाओ, परंतु ये कर्म ही एडिक्शन हो गया है, वर्क एडिक्शन, और उसी से दुखी भी है, उससे स्वयं को डिटैच नहीं कर पाता, जबकि जीवन में जब तक साक्षी का भाव नहीं, साक्षी की साधना नहीं, डिटैचमेंट नहीं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर नहीं, तब तक व्यक्ति आइडेंटिफाई करेगा, तदात्म करेगा और दुखी होगा। यू शुड हैव द पावर टू डिटैच यूरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, एट वन मोमेंट यू आर प्लेइंग इन द गार्डन, एट अनदर मोमेंट यू आर गोइंग इन द टेम्पल एंड सिटिंग इन मेडिटेशन, एट अनदर मोमेंट यू आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर एंड सर्विंग द लॉस्ट, द लोवेस्ट एंड द लोवलीएस्ट, एंड अनदर मोमेंट यू आर गोइंग इन द जंगल एंड गेटिंग लॉस्ट इन समाधि, दैट इज कर्म योग। द पावर टू डिटैच यूरसेल्फ, एट वन मोमेंट यू आर दिस, द मोमेंट यू डिटैच यूरसेल्फ एंड यू गेट एंगेज इन सम अदर वर्क, फ्रॉम देयर यू गेट आउट एंड यू डू समथिंग एल्स, दिस इज वॉट इज कर्म योग। It is not to get attached to something so much so that your existence seems inseparable from that work, while work is just an instrument that has been given unto you. इसके लिए कर्म में इतना खो ना जाओ, कर्म के जंगल में इतना खो ना जाओ, कर्तव्यों के जंगल में, मेरा कर्तव्य, तुम्हारा है पर वो तुम्हारा मैं, मेरा ही दुख का कारण है। Power to get detached from everyone, चाहे संबंध कैसा भी हो, कितना भी गहरा हो, कर्म कितना भी अच्छा हो, सभी अच्छे कर्म साधन ही साध्य कुछ और है, ये मत भूल जाओ। जिसको पकड़ा है कुछ पाने के लिए, वही बंधन हो जाएगा एक दिन। महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया, एक बार वो जा रहे, चार पांच लोग आ रहे, एक नाव को अपने सिर पर उठाकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा, ये कैसा दृश्य है, पांच लोग नाव को सिर पर उठाकर चल रहे हो। वो कहता है, ये नाव का कितना धन्यवाद, जब हम खो गए थे समुद्र में, इसी नाव ने हमको इस पार किया, और उसी धन्यवाद के लिए हम इसको सर पर लेके जा रहे हैं। अहोभाव, कृतज्ञता। व्यक्ति को बीमारी हुई, मलेरिया हुई, मलेरिया से दवाई खाई, ठीक हो गया, बाद में मलेरिया की दवाई खाना चालू एक महीना तक। क्यों? कितना उपकार इन दवाइयों का, कि जिसने मुझे मलेरिया से मुक्त करा, ऐसे कैसे छोड़ दूं उसको। उसी तरह जो साधन है वो साध्य नहीं, साध्य कुछ और है, गंतव्य कुछ और है, डेस्टिनेशन कुछ और है। साधन को साध्य समझने की भूल नहीं करना। मीन्स आर नॉट एंड, मीन्स आर मीन्स। अगला एन न्यूज, न्यूज एडिक्शन। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या किया। जीसस क्राइस्ट के जीवन में दिखाया है, तीन दिन के बाद जीसस क्राइस्ट पुनः जागरण होकर आता है, जीवित होकर। तो एक शिष्य उनसे पूछता है, जॉन ने पीटर पूछता है, आपका मेरे विषय में क्या विचार है, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो। जीसस कहता है हाँ। फिर से पूछता है, डू यू लव मी, यस, डू यू लव मी, यस। फिर पीटर पूछता है, ये जो पीछे जॉन आ रहा है इसके विषय में तुम्हारा क्या विचार है। जीसस कहता है, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें उससे क्या लेना, तुम अपने काम से काम रखो, मैं उससे कितना प्यार करता हूं वो मैं जानू और वो जानू। यहां की सूचना, वहां की सूचना, इसके घर क्या हो रहा है, उसके घर क्या हो रहा है, सूचना है, सूचना है, सूचना है। न्यूज न्यूज न्यूज, टू मच इंफॉर्मेशन कॉजेस पीसलेसनेस। लिख के रखो वाक्य को, यह भी एक एडिक्शन है, न्यूज एडिक्शन। ऑनलाइन न्यूज, सबसे पहले उठते ही अखबार, वहां से दिन की शुरुआत होती है, और उसमें होता क्या है, ये उसने कर दिया, ये उसने कर दिया, यहां ये जला दिया, वहां वो जला दिया। व्यक्ति का रस है इन चीजों में। दो व्यक्ति सड़क पर लड़ रहे, झगड़ा हो रहा है, और हम वहां से जा रहे, रुक जाते हैं देखने के लिए, और दोनों की थोड़ी देर में दोस्ती हो जाती है, बड़ा आघात होता है। इधर ऐसा लगता है कुछ और होगा, अभी कुछ और होगा दोनों का, इधर से इसने बोला, उधर से उसने बोला, फिर एकदम अचानक दोनों मित्र बन गए, तो फिर जैसे लगता है, पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। किसमें रस है व्यक्ति का, झगड़े में? तो न्यूज, जो काम का है वो ले लो और बाकी छोड़ दो। सब सारी दुनिया में क्या हो रहा है वो जानने का तुम्हारा काम नहीं है, और जान भी लो तो क्या करोगे, स्व कल्याण नहीं किया, विश्व कल्याण कैसे करोगे। तो ये 10 एडिक्शन थे, फिर से एक बार रिवाइज। पहला एम्बिशंस, वर्ल्डली एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा है। कौन सा बचा है? एस, एस अर्थात सब्सटेंसेस। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। सब्सटेंसेस में चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसके ही एडिक्ट, चॉकलेट, शुगर। खाने के बाद जब तक गुड़ नहीं जाता ऐसा नहीं लगता है कि भोजन किया, खाने के बाद डिब्बा चाहिए पेड़े का रखा हुआ। दुनिया को कहते हैं, उनको कहते हैं, हम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, छोड़ दो तंबाकू, छोड़ो। हमने क्या छोड़ा? हमको भी तो क्रेविंग होती है, तलब, शरीर मांगता है, और नहीं मिला तो विड्रॉल सिम्टम्स जैसे उसको होते। सब्सटेंसेस, लिस्ट बनाओ, कौन से सब्सटेंसेस को हमने, हमें एडिक्शन है। उन सब्सटेंसेस में कोई व्यक्ति भी तो हो सकता है, वो व्यक्ति चाहिए, वो नहीं तो बेचैनी। फीका फीका है दिल का जहां, कहां छुपा है उसको ही ढूंढ रहे। पहला ए, ए फॉर एम्बिशंस, दूसरा डी फॉर डिजिटल, तीसरा डाइट, चौथा इम्प्यूरिटी, पांचवा ए डी डी आई सी, सी फॉर कॉन्वर्सेशन, टी ट्रेवल, उसके बाद आई, आई फॉर आई नेस, आई हुड, अगला ऑक्यूपेशन, अगला न्यूज, अगला सब्सटेंस। इंटरनेट डिजिटल में और दो चीजें रह गई है, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन गेम्स। चार तो बता दिए, पहिए चार पहिए और दो है, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन गेम्स। एक व्यक्ति, एक बहुत मोटी सी महिला डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि आपने कहा था क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, टेनिस खेलो तो वजन कम हो जाएगा, मेरा तो कुछ भी कम नहीं हुआ। तो उसने पूछा, अच्छा कैसे, कितना समय खेला? उसने कहा जब तक बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई तब तक। ऑनलाइन गेम्स में लगे हुए। टेररिस्ट पर स्टडी की गई, उनको पूछा गया तुम कौन से गेम खेलते थे, सभी टेररिस्ट ने बताया जब हम बच्चे थे, वो जो ग्रुप था टेररिस्ट का, आतंकवादियों ने, उन्होंने बताया कि हम वो वीडियो गेम्स खेलते थे जिसमें मारो काटो, ये गेम्स उसको बहुत अच्छे लगते थे, इसके वो एडिक्ट थे, और इसी का ही एक दिन वो स्वरूप बन गए। बच्चों को हम कौन से गेम्स सिखा रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस यहां से बाय दबाया और आ जाती है चार दिन में, वो भी एक एडिक्शन है। तो इन दसों एडिक्शनों से के ऊपर चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो और स्वयं को पहले डी एडिक्ट करो। अभी हम एक छोटा सा 2 या 3 मिनट का लास्ट में योग की एक कॉमेंट्री करेंगे, सभी अलर्ट होके बैठेंगे। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, संपूर्ण मौन चेतना की वह शक्तिशाली किरण, मैं हूं। अत्यंत तेजस्वी मैं एक प्रकाश पुंज हूं, देह के भान से परे, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूं, पवित्रता मेरा श्रृंगार है, पवित्रता ही मेरा निज धर्म है, स्वधर्म है, मैं अत्यंत पवित्र आत्मा हूं, संपूर्ण शांत, सभी विकारों से मुक्त, निज स्वरूप में स्थित, व्यसनों से परे, मैं प्रकाश पुंज हूं, महसूस कर रही हूं स्वयं को, कितना आनंद है, अपने निज स्वरूप में। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, इसी पवित्रता को मैं अपने जीवन में धारण कर सारे विश्व में इस पवित्रता की खुशबू फैलाने का आज यह दृढ़ संकल्प करता हूं, करती हूं। मैं उस परम शांति को आज प्राप्त कर चुकी हूं। कई दिनों तक यहां वहां भटकने के बाद भी जो मुझे नहीं मिली, अब इसी शांति को मैं अपने जीवन में संपूर्ण रीति से बिखेरती हूं।